हम सब मतलब बचपन से ही ना उस एक लाल सिंहों वाले और हाथ में त्रिशूल पकड़े शैतान की छवि से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं।
हाँ बिल्कुल, एकदम वही आग के बीच खड़ा हुआ ट्रेडिशनल विलेन है ना।
सही कहा, मतलब सदियों से ना कहानियों में, आर्ट में और पॉप कल्चर में उसको हमेशा एक तरह से ब्रह्मांड के सबसे बड़े खलनायक के रूप में दिखाया गया है।
सारी बुराई की जड़।
बिल्कुल, पर क्या हो अगर कोई ये कहे कि इतिहास की सबसे पुरानी किताबों में से एक में ये जो हमारा सो कॉल्ड महाखलनायक है, ये असल में कोई दानव नहीं बल्कि बस एक आम सा एम्प्लॉय था।
एक एम्प्लॉय?
हाँ, मतलब स्वर्ग की किसी बोर्ड मीटिंग में बैठा एक मामूली सा कर्मचारी जो बस अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था।
देखिए, ये दावा सुनने में वाकई किसी बड़े झटके जैसा लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं की नींव ही हिला दी हो।
वही तो।
लेकिन जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को उनकी मूल भाषा और उस दौर के सांस्कृतिक चश्मे से पढ़ते हैं ना, तो कई बार ऐसी ही हैरान करने वाली सच्चाइयां सामने आती हैं।
सही बात है, जो हमारी आधुनिक धारणाओं को पूरी तरह से पलट कर रख देती हैं।
एकदम पलट देती हैं। और जब तक हम प्राचीन दुनिया के लोगों की मानसिकता को नहीं समझेंगे, हम उनके लिखे ग्रंथों का सही अर्थ कभी नहीं निकाल पाएंगे।
हाँ, क्योंकि हम आमतौर पर 1000 या 2000 साल पुरानी बातों को आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड से
तौलने की गलती करते हैं। बिल्कुल।
तो आज की इस गहन चर्चा का विषय एकदम यही है। हम लोग डॉक्टर जॉन वॉल्टन के शोध के आधार पर बुक ऑफ जोब के 9वें सत्र, जिसने स्वर्ग का दृश्य भाग 1 पर बहुत ही विस्तार से बात की है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं।
ये वाकई एक बहुत ही डीप डाइव होने वाला है मूल स्रोत में।
हाँ, और यहाँ हमारा मकसद किसी भी धार्मिक मान्यता को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, ना ही हम किसी राजनीतिक बहस में पड़ रहे हैं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास और भाषा के नजरिए से उन पन्नों पर असल में लिखा क्या गया था,
जो कि एक बहुत ही निष्पक्ष और जरूरी अप्रोच है।
तो चलिए सीधे कहानी के उस पहले और सबसे रहस्यमयी दृश्य में चलते हैं। शोध के अनुसार कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भव्य लेकिन थोड़े हैरान करने वाले दृश्य से होती है।
स्वर्ग का दरबार।
हाँ, स्वर्ग का दरबार लगा हुआ है। यावे यानी ईश्वर एक सभा कर रहे हैं और उनकी जो ईश्वरीय परिषद है, या जिसे हम डिवाइन काउंसिल कह सकते हैं, वो वहां जुटी हुई है।
और वहां क्या हो रहा है?
वर्णन ये कहता है कि ईश्वर के पुत्र जो इस परिषद के सदस्य हैं, एक एक करके सामने आते हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं।
रिपोर्ट दे रहे हैं।
हाँ, अगर इसको आज के भाषा में समझें तो ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की ना मंडे मॉर्निंग मीटिंग जैसा लग रहा है, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग सीईओ को अपना अपडेट दे रहे हैं।
ये कंपैरिजन वाकई काफी सटीक है, क्योंकि प्राचीन इसराइलियों की दुनिया को देखने की समझ कुछ ऐसी ही थी। उनके लिए ब्रह्मांड का एडमिनिस्ट्रेशन किसी राजशाही दरबार की तरह ही काम करता था।
लेकिन रुकिए, यहाँ ना एक बहुत ही बुनियादी और लॉजिकल उलझन पैदा होती है।
कैसी उलझन?
देखिये, एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं, है ना, उन्हें सब कुछ पता है, उनके लिए कुछ भी छिपा नहीं है। तो फिर उन्हें इस तरह की मीटिंग बुलाने की या किसी काउंसिल से दुनिया भर की रिपोर्ट लेने की जरूरत ही क्या पड़ी?
ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं।
मतलब क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि ईश्वर को ब्रह्मांड चलाने के लिए किसी की सलाह या नए अपडेट्स की जरूरत है?
ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर लोग यहाँ आकर अटक जाते हैं। लेकिन इसका जवाब ये है कि इस परिषद का होना ईश्वर की किसी कमी या अज्ञानता को बिल्कुल नहीं दर्शाता।
अच्छा, तो फिर क्या है ये?
ये केवल उनके काम करने का एक चुना हुआ तरीका है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव शैली है। अगर हम पुराने इसराइल के बाकी साहित्य को देखें तो ये धारणा वहाँ की किताबों में और भी कई जगहों पर काफी प्रमुखता से दिखाई देती है।
तो क्या इस तरह की हेवन वाली मीटिंग का जिक्र और भी कहीं मिलता है?
जी हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए एक राजा अध्याय 22 में एक सीन है जहाँ ईश्वर सिंहासन पर बैठे हैं और स्वर्ग की पूरी सेना उनके दाएं बाएं खड़ी है।
ओह वाओ, वहां भी कोट लगा है।
हाँ, और यशया अध्याय 6 में भी एक ऐसा ही नजारा है जहाँ ईश्वर पूछते हैं कि मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। यहाँ तक कि भजन संहिता 82 में भी इस ईश्वरीय परिषद के बीच न्याय करने का जिक्र है।
यानी ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये उनके सोचने का एक एस्टैब्लिश हो चुका तरीका था।
बिल्कुल सही पकड़ा। और इसको पूरी तरह समझने के लिए ना हमें उस समय की बाकी संस्कृतियों को भी देखना होगा। उस दौर में आसपास की जो संस्कृतियां थीं, उनमें बहुदेववाद यानी मल्टीपल गॉड्स को मानने की प्रथा थी।
हाँ, जहाँ बहुत सारे भगवान होते हैं।
वही उन कल्चर्स में कई देवता मिलकर पावर शेयर करते थे और आपस में उनका लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। लेकिन बुक ऑफ जोब का ये दृश्य उनसे बहुत अलग है।
किस तरह से अलग है ये? यहाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है और बाकी सब उनके पूरी तरह अधीन है। ईश्वर को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस परिषद के माध्यम से काम करना पसंद करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से ये उन प्राचीन सुनने वालों को ये बताने का एक साहित्यिक तरीका था कि ब्रह्मांड का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से एक के ही हाथ में है।
एकदम सही।
पर अब यहाँ चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये एक कॉरपोरेट बोर्ड मीटिंग की तरह है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे जो अपना अपना काम कर रहे होंगे।
हाँ, सबका अपना रोल होगा।
लेकिन अब ना इस मीटिंग में एक नया किरदार आता है और इसका प्रोफाइल बाकी सबसे एकदम अलग है। वर्णन कहता है कि ईश्वर के पुत्रों के बीच एक ऐसा किरदार आता है जिसे सदियों से विवादों और डर का केंद्र माना गया है,
जिसे हम ट्रांसलेशन में सेतान पढ़ते हैं।
एग्जैक्टली, अनुवादों में इसे सेतान यानी शैतान कहा गया है। अब कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि स्वर्ग के उस परम पवित्र दरबार में जहां सब कुछ कंट्रोल में है, वहां अचानक से महाखलनायक कैसे आ गया
और उस दृश्य में उसका काम ही क्या है।
हाँ, उसका वहां क्या काम?
और पता है, ठीक इसी पॉइंट पर ना इतिहास ने सबसे बड़ी भाषाई भूल की है जिसका असर सदियों तक चल रहा है।
भाषाई भूल मतलब ट्रांसलेशन का चक्कर है।
हाँ, जब मॉडर्न लोग इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो मान लेते हैं कि सैतान नाम का कोई बुरा व्यक्ति, जो ईश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो किसी तरह बस स्वर्ग में घुस आया है।
राइट।
लेकिन अगर हम डॉक्टर वॉल्टन के शोध और मूल हिब्रू टेक्स्ट यानी हिब्रू भाषा की गहराई में जाए ना, तो ये किरदार कोई व्यक्तिगत नाम है ही नहीं।
एक मिनट थोड़ा ठहरने दीजिए। हाँ, आप कह रही हैं कि जिस किरदार को सदियों से एक प्योर ईवल के रूप में, एक पर्सनल विलन के रूप में देखा गया, वो कोई नाम ही नहीं है?
नहीं, वो नाम नहीं है।
ये हजम करना सच में थोड़ा मुश्किल है। क्या ओरिजिनल टेक्स्ट में वाकई ऐसे कोई इशारा नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है?
भाषा के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। देखिए, इब्रानी भाषा में यहाँ हाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। इब्रानी ग्रामर में हाँ इंग्लिश के थी की तरह एक डेफिनेट आर्टिकल होता है।
अच्छा, जैसे द।
हाँ, इसलिए मूल शब्द वास्तव में हसतान है, जिसका एग्जैक्ट मतलब है द सेटन। अब ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, हम किसी इंसान के नाम के आगे ती नहीं लगाते। हम द रमेश या द जॉन नहीं कहते हैं ना।
अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये कोई पर्सनल नाम नहीं है, इसलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते वक्त कैपिटल लेटर से भी शुरू नहीं किया जाना चाहिए।
ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। ये असल में एक रोल या पोस्ट को डिस्क्राइब करता है। ये बस एक जॉब टाइटल है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं।
ओ भाई, ये तो हमारी पूरी समझ को ही एकदम से पलट देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हसतान कोई लाल सिंहों वाला राक्षस नहीं, बल्कि जैसे द बेकर, द मैनेजर या द ऑडिटर, ऐसी कोई उपाधि है।
एकदम सही, द ऑडिटर काफी फिटिंग टर्म है यहाँ।
तो अगर ये सिर्फ एक पोस्ट है तो क्या इसका मतलब यह है कि इस रोल को कोई भी निभा सकता है?
बिल्कुल निभा सकता है। इब्रानी भाषा में जो सैतान शब्द है वो एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। जब ये एक वर्ब यानी क्रिया के रूप में आता है तो इसका बेसिक मीनिंग होता है विरोध करना, चुनौती देना, या एक विरोधी की तरह बिहेव करना,
जैसे कोर्ट में होता है।
हाँ, इसे हम एक प्रोसिक्यूटिंग अटर्नी की तरह समझ सकते हैं, जैसे अदालत में एक वकील होता है जिसका काम ही कमियां निकालना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना और दावों पर सवाल उठाना होता है।
राइट, वो कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से थोड़ी ऐसा करता है, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा होता है।
एग्जैक्टली, वो बस अपना काम कर रहा है।
तो ये कोई कॉस्मिक विलेन नहीं है, बल्कि स्वर्ग के सिस्टम का बस एक कर्मचारी है। क्या बात है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक रोल है तो क्या इस पुराने टेक्स्ट में इस चुनौती देने वाले की भूमिका में कोई और भी नजर आता है क्या?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि अगर ये एक जॉब टाइटल है तो इसे किसी और ने भी तो निभाया ही होगा ना। और इसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
ऐसा क्या?
ओल्ड टेस्टमेंट में ये रोल कई अलग अलग लोगों और शक्तियों ने निभाया है। यहाँ तक कि इंसान भी शैतान की भूमिका में दिखाई देते हैं।
वेट, इंसान मतलब कोई आम आदमी भी शैतान हो सकता है?
हाँ, अगर हम शब्द के मूल अर्थ यानी विरोधी या चैलेंजर को ध्यान में रखें तो।
अच्छा, एग्जाम्पल दीजिए।
उदाहरण के लिए, पहला राजा अध्याय 11 में जब राजा सुलेमान के राज का बाकी राजाओं और विद्रोहियों ने विरोध किया था ना, तो उन इंसानी विरोधियों के लिए भी इब्रानी में इसी शैतान शब्द का ही इस्तेमाल हुआ था।
क्या बात कर रहे हैं।
हाँ, वो कोई अलौकिक खलनायक थोड़ी थे, वो बस इंसान थे जो सुलेमान का पॉलिटिकली विरोध कर रहे थे।
ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला फैक्ट है। जो शब्द आज सारी दुनिया में परम बुराई का जैसे सिनोनिम बन गया है, वो आज ओरिजिनली सिर्फ एक पॉलिटिकल विरोधी के लिए भी यूज होता था।
और बात सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकती, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि खुद ईश्वर का दूत भी ये रोल निभा सकता है।
हैं? ईश्वर का अपना दूत? ये कैसे पॉसिबल है?
गिनती 22 यानी नंबर्स 22 में एक बहुत ही फेमस कहानी है। बालाम नाम का एक आदमी अपने गधे पर बैठकर एक ऐसे रास्ते पर जा रहा होता है जो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ था।
अच्छा।
तब ईश्वर का अपना दूत एक विरोधी बनकर एक शैतान के रूप में उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो जाता है। मूल टेक्स्ट में साफ लिखा हुआ है कि ईश्वर का दूत बालाम के लिए शैतान बनकर खड़ा हुआ।
ये तो सच में अनबिलीवेबल है। मतलब ईश्वर का अपना फरिश्ता जिसे उन्होंने खुद भेजा है, वो भी उस सिचुएशन में शैतान कहलाया है आ रहा है क्योंकि वो रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है।
यही नहीं, ज़कर्याह अध्याय 3 में भी एक सीन है जहां द सेटन महायाजक योशु पर आरोप लगा रहा है, और एक इतिहास 21 में भी ये दाऊद को जनगणना करने के लिए उकसाता है।
तो इन सबको देखकर तो लगता है,
हाँ, इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद डॉक्टर वॉल्टन का शोध एक क्लियर कर देता है कि इस रोल में आम रूप से कुछ भी बुरा या इंट्रिंसिकली इविल नहीं है। ये सिर्फ एक ऑडिटर का काम है जो सिस्टम में सवाल उठाता है।
तो अगर हम फिर से उस बुक ऑफ जॉब के सीन पर वापस आएं, तो इस किरदार में कोई भी वो बुरी वाली डायबोलिकल हंसी नहीं है।
वो स्वर्ग के दरबार में आकर कोई छिपकर षड्यंत्र नहीं रच रहा।
बिल्कुल नहीं। ना ही वो किसी इंसान के कान में फुसफुसाकर उसे लालच दे रहा है, और ना ही किसी को पोजेस कर रहा है। वो केवल ईश्वर का एक एजेंट है जो एक रिपोर्ट पेश कर रहा है। लेकिन फिर उसका असल काम या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वहाँ? वो इस मीटिंग में एग्जैक्ट कर क्या रहा है?
वो वहाँ ना अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठा रहा है। वो ईश्वर के एक एजेंट के रूप में एक चैलेंजर की भूमिका में खड़ा है, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जॉब को चुनौती नहीं दे रहा है, वो असल में ईश्वर की पॉलिसीज को चुनौती दे रहा है।
बाप रे, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। एक कर्मचारी ईश्वर की पॉलिसीज को चैलेंज कर रहा है।
वो पॉलिसी है क्या?
पॉलिसी ये है कि ईश्वर नेक लोगों को इनाम देते हैं। चैलेंजर कहता है कि आपने जॉब को इतनी प्रॉपर्टी दी, अच्छा परिवार और सिक्योरिटी दी है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी पूजा तो करेगा ही।
हाँ, स्वार्थ की वजह से। वही, लेकिन क्या वो असल में मेक है, या वो सिर्फ इसलिए अच्छा बना हुआ है क्योंकि उसे उसके बदले में बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं? ये कोई झूठा आरोप नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस ऑडिट ऑब्जेक्शन है। ये सवाल उठाता है कि अगर नेक और अच्छे लोगों को हमेशा इनाम मिलते रहेंगे, तो क्या ये उनकी नेकी को स्वार्थ में नहीं बदल देगा? इस पूरी बहस में जॉब तो सिर्फ एक टेस्ट केस है।
तो चुनौती देने वाला स्ट्रिक्टली कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, ये काम नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ फायदे के लिए नेक होने का नाटक कर रहे हैं, और ईश्वर कहते हैं कि ठीक है, चलो जॉब पर इसका टेस्ट करते हैं क्योंकि वो मेरा सबसे नेक बंदा है। ये वाकई किसी सिस्टम ऑडिट जैसा ही लग रहा है।
एकदम, एक ऑडिट प्रोसेस की तरह।
लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। अगर ये चुनौती देने वाला केवल ईश्वर के आदेश पर एक ऑडिटर की तरह अपना काम कर रहा है, उसकी उसमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो फिर जॉब के जीवन में जो इतनी भयंकर तबाही आती है, उसके बच्चे मारे जाते हैं, सब लुट जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, उस बेहिसाब दुख के लिए असल में जिम्मेदार कौन है?
और यहीं पर आकर ना, ये टेक्स्ट किसी भी मॉडर्न रीडर को बहुत असहज कर सकता है, क्योंकि इस कहानी के अनुसार जॉब के दुखों के लिए वो चैलेंजर या ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, ईश्वर खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं।
ईश्वर खुद जिम्मेदारी लेते हैं, ये तो उस पूरी धारणा के खिलाफ है जो हमें सिखाई गई है कि हर बुरी चीज शैतान करता है।
हाँ, अगर आप अध्याय 2 को ध्यान से पढ़ें, तो ईश्वर क्लियर वर्ड्स में उस चुनौती देने वाले से कहते हैं कि तूने मुझे उसे बिना कारण बर्बाद करने के लिए उकसाया।
ओ, उन्होंने कहा तूने मुझे उकसाया।
हाँ, ध्यान दीजिए, ईश्वर ये नहीं कहते कि तूने उसे बर्बाद किया, बल्कि तूने मुझे उकसाया। पूरी कहानी में कहीं भी जॉब या उसके दोस्त ये नहीं सोचते कि इस बर्बादी के पीछे किसी दुष्ट दानव का हाथ है।
राइट।
वो सब, और यहाँ तक कि खुद जॉब भी, इस तबाही के लिए सीधे तौर पर ईश्वर को ही जवाबदेह मानते हैं।
ये तो दिमाग में एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा कर देता है ना। अगर ईश्वर खुद मान रहे हैं कि जॉब की बर्बादी उन्होंने की और वो ऑडिटर सिर्फ अपना काम करके गायब हो गया, तो आ तो फिर आगे चलकर हिस्ट्री में इस ऑडिटर को इतना भयानक विलन क्यों बना दिया गया?
ये वाकई एक बड़ा सवाल है।
हाँ, मतलब अगर वो खलनायक नहीं था तो ये शिफ्ट कब और क्यों आया? इतिहास ने इतनी बड़ी करवट ली कैसे?
देखिए, इस बदलाव के पीछे का जो कारण है ना, वो मानव मनोविज्ञान और हिस्ट्री के पन्नों में छिपा है। ये समझना जरूरी है कि बुक ऑफ जोब एक लिटरेरी कंस्ट्रक्ट है जिसे खास तौर पर एंशिएंट इसराइली ऑडियंस के लिए लिखा गया था।
अच्छा।
उस दौर के सुनने वालों के पास बुराई के एक प्योर फॉर्म की कोई धारणा थी ही नहीं। उनके लिए अच्छा और बुरा दोनों ईश्वर की तरफ से ही आता था।
तो फिर बदलाव कैसे आया?
जैसे जैसे सदियां बीती ना, खास करके जब इसराइली लोग ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म और बाद में ग्रीको रोमन कल्चर के संपर्क में आए, तो उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। इन बाहरी कल्चर्स में कॉस्मिक ड्यूलिज्म की भारी मान्यता थी।
कॉस्मिक ड्यूलिज्म मतलब एक तरफ पूरी तरह अच्छा भगवान और दूसरी तरफ पूरी तरह बुरा शैतान जो आपस में हमेशा लड़ रहे हैं।
बिल्कुल वही। तो इंसानों को इस नए आइडिया को एक्सेप्ट करने में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर से अच्छी और बुरी दोनों चीजें एक साथ कैसे आ सकती हैं।
ओह, आई सी। तो उन्हें दुनिया की बुराइयों और दुखों का दोष मढ़ने के लिए एक स्केपगोट या बलि का बकरा चाहिए था।
एग्जैक्टली, बलि का बकरा। दुनिया में इतने अन्याय और इतने बिना कारण दुख को देख करना, इंसान के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि ये सब एक अच्छे ईश्वर के कंट्रोल में हो रहा है। इसलिए वक्त के साथ टेक्स्ट्स के ट्रांसलेशंस और एक्सप्लेनेशंस में इस ऑडिटर को धीरे धीरे उस परम बुराई के सिंबल में बदल दिया गया।
कितनी अजीब बात है।
हाँ, उस हिसातान या द सेटन को एक प्रॉपर नाम सेटन दे दिया गया और सारी बुराइयों का बिल उसके नाम पर फाड़ दिया गया। ये बस ह्यूमन ब्रेन के लिए चीजों को आसान बनाने का एक तरीका था।
तो इस पूरी चर्चा का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? जो लोग हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंशिएंट लिटरेचर को समझने के लिए हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इस नॉलेज का एक्चुअल पॉइंट क्या है?
डॉक्टर वॉल्टन का शोध ये पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि बुक ऑफ जोब में इस चैलेंजर को ब्रह्मांड का विलन मान लेना एक्चुअली इस बुक के मूल मैसेज को ही खत्म कर देता है।
बिल्कुल सही।
अगर हम इस चैलेंजर को कॉस्मिक ईविल मान लेते हैं, तो हम दुनिया में होने वाले दुखों के लिए एक आसान सा बहाना ढूंढ लेते हैं।
बिल्कुल।
हम कहते हैं, ओ, ये तो शैतान का काम है।
बिल्कुल,
है ना?
हाँ, बहुत आसान हो जाता है ब्लेम करना।
लेकिन ये किताब असल में ये नहीं सिखाती। इस पूरी बुक की थियोलॉजी में उस किरदार की इम्पोर्टेंस ना के बराबर है। वो बस एक छोटा सा किरदार है जो स्टार्टिंग में स्टेज सेट करने के लिए आता है, एक फिलोसफिकल सवाल उछालता है और फिर कहानी से पूरी तरह गायब हो जाता है।
और एक बार जब स्टेज सेट हो जाता है तो असल मुद्दा सामने आता है। असल मुद्दा कोई अच्छाई और बुराई के बीच की वो जादुई लड़ाई नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं।
असल मुद्दा तो ये है कि दुख यहाँ केवल जोब की धार्मिकता और उसकी नेकी की गहराई को परखने का एक टूल है बस। दुखी वो इकलौता तरीका है जिससे ये साबित हो सकता है कि क्या कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी फायदे या लालच के भी हमेशा नेक बना रह सकता है।
हाँ, और वाकई यही इस टेक्स्ट की असली और सबसे बड़ी डेप्थ है। ये दुनिया के हर दुख का कोई सीधा सा एक्सप्लेनेशन हमें पकड़ा नहीं देता, बल्कि ये आदमी के इरादों, उसकी नीयत और उसकी नेकी के असली फॉर्म का ऑडिट करता है। स्वर्ग का दृश्य एक्चुअली में एक ऑडिट रूम है जहां सिर्फ इंसानी नीयत परखी जा रही है।
आज की इस गहन चर्चा ने ना वाकई सोचने के उस पुराने नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया है। हमने देखा कि कैसे ट्रांसलेशन में बस एक छोटा सा डेफिनेट आर्टिकल द पूरी कहानी का मीनिंग ही पलट सकता है।
भाषा की ताकत।
हाँ, हसातन कोई नाम नहीं बल्कि एक पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात, इंसान के दुखों का कारण कोई बाहरी शैतानी षड्यंत्र नहीं बल्कि उसकी नेकी का एक बहुत ही कठिन टेस्ट हो सकता है। ये हमें टेक्स्ट को उनके सही और मूल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की वैल्यू सिखाता है,
और यही इन एंशिएंट टेक्स्ट की खूबसूरती है।
तो अब आते हैं चर्चा के अंत में। एक बहुत ही गहरा और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़कर जाने का समय आ गया है। डॉक्टर वॉल्टन के शोध ने चैलेंजर का जो मैं सवाल सामने रखा कि क्या इंसान केवल मिलने वाले इनामों, सिक्योरिटी और फायदों के कारण ही नेकी के रास्ते पर चलता है, जरा इसको आज के इस मॉडर्न टाइम के पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
ये आज के दौर में जहां ना हर अच्छे काम के बदले सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स और एक इंस्टेंट वैलिडेशन की उम्मीद की जाती है, जहां नेकी का भी ना एक तरह से पब्लिक डिस्प्ले होता है, एक पीआर एक्सरसाइज होती है।
हाँ, दिखावा बहुत है आजकल।
तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इस सोसाइटी से ये सारे छुपे हुए रिवॉर्ड्स एकदम से हटा लिए जाएं, अगर किसी इंसान को कोई देख ना रहा हो, कोई ताली ना बजा रहा हो और उसके अच्छे कामों की कोई तारीफ ही ना हो रही हो, तो इस दुनिया में असल में कितनी सच्ची नेकी बाकी बचेगी।
वाकई बहुत गहरा प्रश्न है ये।
क्या बिना किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के भी मानव जाति सिर्फ अच्छाई के लिए अच्छी बनी रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद एंशियंट स्वर्ग के उस दरबार से शुरू होकर आज आधुनिक दुनिया के हर एक इंसान के जमीर तक पहुंचता है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।